चलते हैं आप डॉक्टर साहब की खिदमत। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करती हूँ, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और जी आप तशरीफ लाए, शुक्रिया।
मैं सलाम अर्ज करता हूँ और आपके नाज़रीन को भी सलाम पेश
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पिछले हफ्ते से लगभग दो हफ्ते गुजर चुके हैं, हमने जो गुफ्तगू की थी डाइट के हवाले से, प्रॉपर डाइट इंसान की कैसे होनी चाहिए ताकि वो फिट रह सके। मैं चाहूँगी उस गुफ्तगू का हम एक छोटा सा फ्लैश बैक हमारे नाज़रीन के लिए करें आज।
खब मौर राजे चौगी सौ पास हमने मोटापे के बारे में गुफ्तगु की थी और 50 साल पहले जो है वो ऑबिसिटी को बीमारी नहीं समझा जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि जो लोग पैसे वाले हैं वो मोटे होते हैं और ये सेहत की अलामत है। लेकिन आज की ज़िंदगी में जो है लोग सिडोल रहना चाहते हैं, अपने जिस्म को सही तरीके से रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें तनासुब हो, उनकी बॉडी में जो है वो तनासुब पाया जाए और उन्हें जो है वो वर्जिश करने की ज़रूरत है और मुतवाजीन ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है। और हमने मोटापे के बारे में ये बात की थी कि मोटापा जो है वो हर फर्द के लिए नुकसानदेह होता है, उसकी वजह से गुर्दे जैसे ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और मोटापे से तकरीबन 200 किस्म की बीमारियां लगती हैं। इसी के साथ हमने जो है वो मोटापे से निजात पाने के उमूर पर हमने गुफ्तगू की थी और हमने मुख्तलिफ डाइट्स पर बात की थी और ये कहा था कि बाज रेजीम जो हैं, बाज डाइट्स जो हैं वो कैलोरीज से भरी होती हैं, लेकिन बाज़ डाइट्स में ये अच्छाई पाई जाती है कि वो कैलोरीज उसमें मुतनासिब पाई जाती हैं जितना आपके बदन को ज़रूरत होती है। और जो डाइट्स जो है वो साइंटिफिक मेयारों पर मबनी नहीं हैं उनसे जो है वो रफ्ता रफ्ता आदमी को नुकसान होता जाएगा। हमें अपने लाइफस्टाइल पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए क्योंकि लाइफस्टाइल हमें बहुत सी बीमारियों से निजात दिला सकता है, करेक्ट लाइफस्टाइल और मुतवाजिन ग़िज़ा हमें रखना चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मुतवाजिन ग़िज़ा जिसमें बदन की सारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए उसे हम मुतवाजिन ग़िज़ा कहते हैं और ये ग़िज़ा जो है वो बदन के लिए ज़रूरी होती है और इससे हम मोटापे को कम कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी ये हमें निजात दिलाती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मेरे बात अभी जहन में आ रही है वो ये है कि हर बीमारी का ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से होता है। मैं पूछना चाहूँगी अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को दुबला पतला करें या स्मार्ट रखें या फिट रहें, हमारी नफ्सियात का इससे कितना लेना देना है, साइकोलॉजी इंसान की कितनी इसमें जो इसका अमल दखल रहता है?
दखील है जी हाँ, इस तरह से है जैसा कि आपने कहा, हम लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, इस्तराब का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से बदन में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं और इंसान मोटापे की तरफ बढ़ने लगता है। और हमारे बदन में एक कुव्वत ऐसी है, एक पहलू ऐसा है जो हमें भूख का एहसास दिलाता है जिसके बाद हम ग़िज़ा खाते हैं और अपने बदन को ताकत पहुंचाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भूख का एहसास जो है वो मग़्ज़ के बाज़ जगहों पे ईजाद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ये आपकी भूख जो है वो काज़िब भूख होती है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती और बाज़ हार्मोन्स के मुतरश्शे होने से ये एहसास होता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, पुरखोरी में मुबतला हो जाता है, और जब तक वो खाता नहीं है उसकी नफ्सियात को सुकून नहीं पहुंचता, नफ्सियाती लिहाज से उसको सुकून नहीं पहुंचता, और जब वो खा ले तो उसको सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पर बाज लोग हैं जो दफ्तर से आने के बाद जो है वो खाने की ज़रूरत उनको महसूस होती है, या आपने खाना खाया और उसके एक घंटे के बाद फिर दोबारा आपको ख्वाहिश हो गई कि खाना खाएं, ये जो है वो फिजियोलॉजिकल भूख नहीं है, बल्कि ये एक तरह से काजिब भूख है। ये जो है इंसान के बदन में स्टोर होती जाती है, ज़खीरा होती जाती है, और इंसान को मोटापे की तरफ ले जाती है, इससे इंसान जो है वो मोटा होने लगता है, क्योंकि इसमें जो नफ्सियाती तौर पे जो आदमी खाना खाता है वो बदन के इस्तेमाल में नहीं आता है, जिसकी वजह से जो है वो इंसान मोटापे की तरफ जाता है। अगर इंसान मुकम्मल तरह से आराम ना करे, उसकी नींद मुकम्मल ना हो, और वो इस्तराब में मुबतला हो और वो स्ट्रेस में मुबतला हो, तो वो मोटापे की तरह बढ़ता है।
डॉक्टर साहब, पूछना ये चाहूँगी कि बहुत से अफराद अपने आसपास हम देखते हैं जो एक डाइट चार्ट पर चलते हैं, ठीक है, उन्हें दुबला होना है, उन्होंने एक महीने तक ये काम किया, एक हफ्ते तक काम किया, और यहाँ पर उनको शिकस्त हासिल हुई और इन्होंने जो है अपने डाइट प्लान को छोड़कर फिर से जो है ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, या फिर ऐसे अफराद उनके हवाले से पूछना चाहूँगी जो बार बार डाइट लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, क्या इसके बुरे असरात उनकी सेहत पर पड़ते हैं या नहीं?
मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि उनका मुहर्रिक क्या था जो उन्होंने डाइट शुरू की थी, और अब वो उनका मुहर्रिक क्यों ख़त्म हुआ है। ऐसे लोग जो है वो महज शौक़ के तौर पर जो है वो डाइट लेने लगते हैं। मैं इस बात पर ताकीद करता हूं कि डाइट पर कायम रहने के लिए आपको एक पुख्ता अज़्म की ज़रूरत है, आपको ठोस अज़्म की ज़रूरत है, ठोस इरादे की ज़रूरत है कि आप उसके मुताबिक डाइट के ऊपर अमल कर सकें, और आपको ऐसा भी इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी दावत में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, तो आप वहाँ पे बद परहेजी कर रहे हैं, तो इस तरह से ना हो, और आपके अज़्म में पाए सिबात में जो है वो लग़ज़िश ना आ जाए। और जो लोग बहुत कम मुद्दत तक के लिए जो है वो डाइट लेते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, और एक हफ्ते के लिए मिसाल के तौर पर जो लोग डाइट लेते हैं उनका कोई उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो ये चाहते हैं कि वो बहुत तेज़ी से दुबले हो जाएं, तो ये बात मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो लोग डाइट लेते हैं कुछ दिनों बाद अगर वो डाइट को चेंज कर देते हैं तो उनका जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर उन वो किसी भी डाइट पर पाबंद नहीं रह सकते और ना कारबंद नहीं रह सकते, और इससे उनका वज़न भी ये बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप 10 किलो अपना वज़न घटाएं और एक्चुअल वज़न आपका 80 किलो रहे, तो इससे ये होता है कि फिर आपका वज़न जो है वो 80 किलो की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि आप अपनी डाइट के ऊपर साबित कदमी से आप उस पर नहीं कायम हैं। तो वो लोग जो जल्दी जल्दी डाइट लेते हैं छोड़ते हैं, उनको کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ جو مستقل طور پر ڈائٹ لیتے ہیں اور ان کا ہدف جو ہے وہ اپنی صحت بنانا ہے، تو ان کو کامیابی ہوتی ہے. اور آپ کو ان فیکٹرز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو فیٹس کی کون سی قسم جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، کون سی جو ہے وہ آپ کو فائدہ مند ہوتی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان دے گی، کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر دوبارہ میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ عزم پختہ عزم کے ساتھ جو ہے وہ ڈائٹ پر باقی رہیں اور ساتھ ساتھ ورزش بھی کریں. اگر آپ ورزش نہیں کریں گے تو آپ کے جو مطلوبہ اہداف ہیں شاید آپ وہ ان اہداف تک پہنچ نہ پائیں جو آپ نے ویٹ کو کم کرنے کے لیے رکھے ہیں. تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ڈائٹ لینے والے کو اپنے ہدف کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور فرض کریں بعض لوگ جو ہیں وہ جب وہ دبلے ہونا چاہتے ہیں ویٹ اپنا کم کرتے ہیں تو وہ اس وقت پہ وہ اپنے کپڑے بنواتے ہیں تو آگے چل کر ان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ جب اگر آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا تو آپ نے جو زحمت اٹھائی ہے وہ زحمت جو ہے وہ رائے گا جائے گی. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈھنگ کی ڈائٹ لینی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر پابند رہیں. اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن سے منفی افکار کو، منفی تھاٹس کو جو ہے وہ دور کریں. کیونکہ اگر ہم منفی تھاٹس کو دور نہیں کریں گے، منفی افکار کو دور نہیں کریں گے، تو ہمیں ڈائٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ پھر وہ جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں وہ بیکار جائے گی اور ہم دوبارہ اوبیسٹی کی طرف پلٹ آئیں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے تمام رستوں کی طرف اشارہ کیا، اب ہم کیا کریں، ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے ڈائٹ پر بھی ڈٹے رہیں اور ہیلدی ڈائٹ بھی لیں اور فٹ بھی رہیں؟
ہاں، آپ کو اپنی ڈائٹ پر کاربند رہنے کے لیے جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی کہا ہے، بہت تاکید کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے پختہ عزم کرنا ہوگا. اور آپ کو ایک جو ہے وہ جرنل بھی بنانا ہوگا جس میں آپ اپنی تمام تفصیلات جو ہے وہ ڈائٹنگ کے لحاظ سے لکھتے رہیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ کی آپ کا وزن جو ہے وہ یکایک نہیں گھٹ سکتا، بلکہ یہ بتدریج وزن جو ہے وہ گھٹے گا. اور یہ بات بھی نہ بھولیں کہ آپ ناشتے کو اپنے غذا میں شامل رکھیں اور غذا میں جو ہے اپنی سبزی جات کا اضافہ کریں، سبزی جات زیادہ رہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر ہم 1/365 رکھیں تو وہی 365 ہوگا.
اور آپ کا سوال یہ تھا کہ جاپان اور چین کے لوگ کیلوریز تک کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں کس طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہر کھانے میں کتنی کیلوریز ہمیں لینی چاہیے؟
بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کا سوال بھی شامل کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ اس سوال کے ساتھ ہی ساتھ پوچھنا چاہوں گی وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو موٹاپے سے بچا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے 4 منٹ کا ہمارے پاس وقت ہوگا.
موٹاپے سے بچنے کی جو ہے وہ بہت سی راہیں ہیں اور آپ کو ایک مقدار مخصوص مقدار تک کیلوریز جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. اور اس کیلوریز کو جو ان کیلوریز کو جو ہے وہ ایک ڈائٹیشین آپ کے لیے معین کر سکتا ہے. عام طور سے 700 کیلوریز پر مشتمل یا 1200 کیلوریز پر مشتمل غذا آپ کو لینی چاہیے اور آپ کی ڈائٹ اس طرح کی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روزانہ 45 منٹ جو ہے وہ ورزش کرنی چاہیے, آپ کا جسم متحرک رہے. اور ہمیشہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا ڈائٹ دبلا ہونے کا سبب بنتی ہے یا پھر تحرک؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں اس امر میں مؤثر ہیں. اور جی ہاں, 45 منٹس کی آپ کو جو ہے وہ ڈیلی متحرک رہنا پڑے گا اور ورزش کرنی پڑے گی. البتہ مریضوں میں الگ فرق پایا جاتا ہے اور ہر مریض جو ہے وہ یونیک ہوتا ہے. اور ہم جس چیز پر تاکید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو لیکوڈز اور بالخصوص پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ایسی غذا کھانا چاہیے جس میں چربی فیٹس جو ہیں وہ بہت کم ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سوپ جو آپ لیتے ہیں اس میں بھی فیٹس جو ہیں وہ کم ہونا چاہیے اور کیلوریز متناسب ہونی چاہیے. اور تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ 150 کیلوریز جو ہیں وہ آپ کو سوپ سے ملنی چاہیے. اور مریض کو اگر یہ کیلوریز مل جائیں تو اس کے لیے کافی ہے. موٹاپے سے بچنے کا ایک اور طریقہ سیلڈز کا استعمال ہے, اور آپ اتنا نہ کھائیں کہ جو آپ کے حلق تک پہنچ جائے, یعنی پرخوری نہ کریں. اور اگر آپ پرخوری کریں گی تو اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا.